समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
नमस्कार, सुप्रभात। कार्यक्रम आज सवेरे में मैं हूं आपके साथ फरहत नाज, और आज मेरा साथ दे रही हैं मेरी सहयोगी नीना रक्कल। नमस्कार नीना।
नमस्कार, गुड मॉर्निंग फरहत, एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इन टू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज़ एंड द आकाशवाणी नेटवर्क।
जी बिल्कुल नीना, आज के अंक में देश और दुनिया के समाचार होंगे और वो सभी जानकारी होगी जिसका है आपसे सरोकार। और आज राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस भी है, उस पर हम आगे बात करेंगे, और अंत में कुछ जानी मानी शख्सियतों को भी हम याद करेंगे।
We bring you our daily news magazine program, Aaj Savere, wherein we share the latest in national and international news, metro city updates, as well as some historical information related to this day, that is 10th of December.
लेकिन सबसे पहले हम मुख्य समाचारों से शुरुआत कर लेते हैं। तो नीना, क्या है आज सबसे पहले खास?
Global software powerhouse Microsoft has pledged the investment of $17.5 billion to help build infrastructure, skills and sovereign capabilities for AI future in India. Microsoft CEO Satya Nadella informed this in a social media post after meeting Prime Minister Narendra Modi yesterday. He said on social media that to support India's ambitions, Microsoft is committing its largest investment ever in Asia.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए एशिया में माइक्रोसॉफ्ट के अब तक के सबसे बड़े निवेश का स्वागत किया है। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत की नेतृत्व क्षमता को लेकर आशा व्यक्त की। माइक्रोसॉफ्ट प्रमुख और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्य नडेला के सोशल मीडिया पोस्ट पर प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरा विश्व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत की क्षमता पर भरोसा करता है। उन्होंने कहा कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा एशिया में अब तक के सबसे बड़े निवेश के लिए भारत का चयन करने पर उन्हें अत्यधिक प्रसन्नता है। श्री मोदी ने आशा व्यक्त की कि भारत के युवा इस अवसर का पूरा लाभ उठाएंगे और बेहतर भविष्य के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करेंगे।
The government has refuted a video circulating on social media that the Union Finance Minister Nirmala Sitharaman is promoting an investment scheme promising 5,000 rupees per hour and claiming that it can generate 1 crore rupees in 6 months. The fact-check unit of the Press Information Bureau, PIB, informed that neither the finance minister nor the government has announced or endorsed any such scheme. PIB has urged citizens to be aware of such fake news and advised them to always verify information through official sources.
और अब बात राजस्थान के जयपुर में प्रवासी राजस्थानी दिवस की, जिसका आज आयोजन किया जा रहा है। देश विदेश के अनिवासी राजस्थानी कार्यक्रम में शामिल होंगे। आठ हजार सात सौ से अधिक प्रतिभागियों ने इस आयोजन के लिए पंजीकरण कराया है। कार्यक्रम के दौरान 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों पर हस्ताक्षर होंगे। इसके अलावा कई निवेश संवर्धन नीतियों और प्रवासी राजस्थानी नीति की घोषणा की जाएगी। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ भागड़े, पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और अनेक केंद्रीय मंत्री और अन्य जनप्रतिनिधि आयोजन में भाग लेंगे। उद्योग जगत की प्रमुख हस्तियां भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगी। एक दिन के इस आयोजन में उद्योग, ऊर्जा, जल, खनन, शिक्षा, पर्यटन और स्वास्थ्य जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर सत्रों का आयोजन होगा। राजस्थान में औद्योगिक और निवेश संभावनाएं और उभरते अवसरों पर भी विचार विमर्श होगा।
Indian Army and Nepal Army jointly conducted two-day battalion level validation exercise as part of 19th edition of exercise Surya Kiran in Pithorgarh, Uttarakhand. The two-day exercise highlighted seamless interoperability, synchronized mission planning and coordinated execution of combined tactical operations in a counter-terrorism environment.
और दिल्ली में चल रहे सरस आजीविका फूड महोत्सव का कल अंतिम दिन था। हस्तशिल्प प्रेमियों की भारी भीड़ वहां पर देखने को मिली। 29 नवंबर से शुरू इस महोत्सव का आयोजन केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत किया था। हमारे संवाददाता ने बताया कि यह आयोजन महिला सशक्तिकरण की एक शानदार मिसाल के रूप में साबित हुआ।
IIT
सदस्य
Madras.
आजीविका फूड महोत्सव 2025 में 25 राज्यों के 500 से अधिक पकवानों ने आगंतुकों को देश की पाक विरासत का एक जीवंत और यादगार अनुभव कराया। देश भर से लगभग 300 लखपति दीदियों और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने राजधानी के सुंदर नर्सरी में अपनी बेहतरीन क्षेत्रीय खाद्य विशेषताएं पेश की। मीडिया से बातचीत में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह महोत्सव सही मायने में महिला सशक्तिकरण को दर्शाता है कि कैसे यह महिलाएं सम्मान के साथ कमा रही हैं, अपने परिवार को मजबूत कर रही हैं और देश की प्रगति में योगदान दे रही हैं। उन्होंने इस दौरान लखपति दीदियों का अभिवादन किया और भारत की ग्रामीण परंपराओं से जुड़े स्वादिष्ट पकवान पेश करने के लिए उनकी सराहना की। 60 से ज्यादा स्टॉल, 50 लाइव फूड काउंटर और 12 प्राकृतिक खाद्य उत्पादों वाले स्टॉल के साथ सरस फूड महोत्सव मात्र एक आयोजन ही नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक संगम रहा जहां महिला सशक्तिकरण की नई कहानियां गढ़ी गई। शिवांग और आदर्श के साथ आदित्य प्रताप सिंह।
IIT Madras and India AI Mission will host a global conclave in Chennai tomorrow to advance the country's vision for safe, trusted and inclusive AI. The Ministry of Electronics and Information Technology said the conclave that will convene ahead of the India AI Impact Summit 2026 will focus on translating AI safety and governance principles into practice. It aims to build capacity and support AI frameworks that are globally interoperable yet locally grounded and scalable. Being hosted in the Global South for the first time, the India AI Impact Summit 2026 is scheduled to take place from 15 to 20th February 2026 at Bharat Mandapam in New Delhi.
और नीना, बहुत ही सारी आज हम लोगों ने बात कर ली, एआई पर चर्चा की और सरस आजीविका मेला जो संपन्न हुआ कल उस पर बातचीत करी। इसके अलावा राजस्थानी अप्रवासी दिवस जो है वो आज से शुरू होने जा रहा है, उस पर हमने बातचीत की। तो क्यों ना अब खेल की जानकारी ले लेते हैं मुकेश कुमार पल से।
जी फरहत, खेल जगत में सबसे पहले बात क्रिकेट की। क्रिकेट प्रेमियों के लिए कल का दिन बेहद खास रहा। भारत ने कल रात 5 मैचों की 2020 श्रृंखला के पहले मैच में दक्षिण अफ्रीका को 101 रन से हरा दिया। ओडिशा के कटक में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 175 रन बनाए। 176 रन के जवाब में दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम मात्र 74 रन पर ही ढेर हो गई। अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल ने दो दो विकेट अपने नाम किए। हार्दिक पांड्या ने सिर्फ 28 गेंद में 59 रन की तूफानी पारी खेली। उन्होंने 6 चौके और 4 छक्के लगाए। हार्दिक को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दोनों टीमों के बीच अगला मुकाबला कल चंडीगढ़ में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। और फरहत, अगर बात करें हॉकी की, तो भारत ने FIH महिला जूनियर हॉकी विश्व कप में कल 9वें से 12वें स्थान के लिए खेले गए मैच में उरुग्वे को पेनल्टी शूटआउट में 3-1 से हरा दिया। निर्धारित समय तक मैच 1-1 से बराबरी पर रहने के बाद फैसला शूटआउट से हुआ। 9वें स्थान के लिए कल भारत का सामना स्पेन से होगा। और जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप में भारत आज कांस्य पदक के लिए अर्जेंटीना से खेलेगा। वहीं प्रतियोगिता के खिताबी मुकाबले में जर्मनी का सामना स्पेन से होगा। इसके अलावा भारत ने स्क्वाश विश्व कप 2025 में शानदार शुरुआत करते हुए पूल बी के अपने पहले मैच में पहली बार प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही स्विट्जरलैंड को 4-0 से हरा दिया। सबसे पहले वेलावन सेंथिल कुमार ने स्विट्जरलैंड के रॉबिन गाडोला को 3-0 से पराजित किया। दूसरे मैच में अनाहत सिंह ने स्विट्जरलैंड की सेलिन वॉल्सर को 3-0 से हराया। तीसरे मुकाबले में अभय सिंह ने लुई हाफिज को 3-0 से मात दी। इसके बाद जोशना चिनप्पा ने स्टेला कॉफमैन को 3-1 से हराकर भारत की स्विस खिलाड़ियों पर 4-0 की जीत दर्ज की। भारत अपने अगले मुकाबले में कल ब्राजील से खेलेगा। जी फरहत, खेल जगत से बस आज इतना ही।
जी धन्यवाद मुकेश खेल जानकारी के लिए।
एंड फरहत, व्हेन एआई कैन बी सो यूजफुल इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज, इट कैन आल्सो बी यू नो बैंड फॉर सर्टेन सेक्शन।
ओके,
सो लेट्स सी व्हाट इट इज। Australia has become the first country to ban social media for children under the age of 16, blocking access to multiple social media platforms. 10 of the biggest platforms were ordered to block children or face fine of up to $33 million under the new law, which drew criticism from major technology companies and free speech advocates, but was welcomed by parents and child advocates.
जी बिल्कुल, बच्चों के लिए तो ये एक बेहतर निर्णय लिया गया है जिससे कि वो सोशल मीडिया में जो है एआई का गलत इस्तेमाल ना कर पाए, तो ये एक बहुत ही अच्छा जो है वो अच्छी पहल है।
Yes, true.
जी बिल्कुल, और अब आगे बढ़ लेते हैं और हम लोग रुक कर लेते हैं महानगरों की खबरों का। तो सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली की बात कर लेते हैं। तो प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली जल बोर्ड के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोप में 4 मुख्य अधिकारी और अन्य प्राइवेट व्यक्तियों, संस्थानों और सहित 14 व्यक्तियों के विरुद्ध शिकायत दर्ज की है। निदेशालय ने बताया कि इस मामले में 4 निविदाओं के आवंटन से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले भी शामिल हैं। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भलसवा में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आयुष्मान आरोग्य मंदिर, ई रिक्शा चार्जिंग स्टेशन, प्राथमिक विद्यालय, पार्क, दुकानें और पार्किंग की व्यवस्था करने की घोषणा की है। उन्होंने ये घोषणा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए बने फ्लैट्स के निरीक्षण के दौरान की। उन्होंने पूर्ववर्ती आम आदमी पार्टी सरकार पर लापरवाही करने का आरोप लगाया और कहा कि ये फ्लैट्स वर्षों पहले तैयार हो गए थे, लेकिन उनकी लापरवाही के कारण ये खाली हैं और अब तक जर्जर स्थिति में हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार भलसवा क्षेत्र को सभी जरूरी सुविधाएं से विकसित करने और झुग्गीवासी को सम्मानजनक आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाने के प्रति संकल्पित है। और अब चेन्नई का रुख कर लेते हैं। तो नीना, चेन्नई में क्या है खास?
इन द स्पेशल इंटेंसिव रोल अ टोटल ऑफ 6,40,84,624 इन्यूमरेशन फॉर्म्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड, अराउंड 68,470 बीएलओज एंड 2,46,069 बीएलएज वर एंगेज्ड इन द प्रोसेस। एज ऑफ यस्टरडे 6,38,25,877 फिल्ड इन फॉर्म्स हैव बीन डिजिटाइज्ड। Moving on to Bengaluru, the Chief Commissioner of the Greater Bengaluru Authority, Maheshwar Rao, has ordered officials to remove all illegal flex banners across the city. In a virtual meeting with officials from the 5 city corporations, he instructed them to fine and file cases against anyone violating advertisement rules or spoiling the city's appearance. He also told officials to quickly clear all unauthorized banners and take strict legal action against offenders.
चेन्नई और बेंगलुरु के बाद मुंबई की ओर चलते हैं। डिजिटल गतिशीलता को बढ़ावा देते हुए मुंबई मेट्रो वन ने घोषणा की है कि अब यात्री उबर ऐप के माध्यम से सीधे मेट्रो टिकट खरीद सकते हैं। इस नई सुविधा से यात्री अपनी मेट्रो यात्रा की योजना बना सकते हैं, बुकिंग कर सकते हैं और उसी ऐप से भुगतान कर सकते हैं जिसका उपयोग वे कैब और ऑटो के लिए करते हैं, जिससे दैनिक यात्रा तेज और अधिक सुविधाजनक बन सकेगी। वहीं बृहन्मुंबई नगर निगम नव वर्ष समारोह से पहले इस महीने की 22 से 28 तारीख तक पूरे मुंबई में एक विशेष अग्नि सुरक्षा अभियान चलाएगा। ये अभियान हाल ही में गोवा के एक नाइट क्लब में लगी आग के बाद शुरू किया गया है, जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी। अग्निशमन विभाग होटलों, रेस्टोरेंट, बार, पब, मॉल और अन्य भीड़भाड़ वाले प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करेगा। महाराष्ट्र अग्नि निवारण और जीवन सुरक्षा अधिनियम के तहत अग्नि सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन करने वाली इकाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
The Telangana Rising Global Summit made history as 3,000 drones created the world's longest airborne sentence, "Telangana is rising, come join the rise." The display held at Bharat Future City also highlighted the state's Vision 2047 unveiled by Chief Minister A. Revanth Reddy. Guinness officials presented him with the certificate for the new record. Niti Aayog Vice Chairman Suman Berry said Telangana has already achieved upper middle income status according to World Bank standards, something India aims for in the coming years. He added that Telangana's goal to strengthen its global presence is timely and assured full support from Niti Aayog.
और अब कोलकाता का रुख कर लेते हैं। तो कल एक बहुत ही अच्छी पहल राष्ट्रीय हस्तशिल्प जो है कलाकारों के लिए की गई, जिसमें कि पश्चिम बंगाल के कई कारोगरों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हस्तशिल्प पुरस्कार प्रदान किए गए। पश्चिमी मिदनापुर के पिंगला की रूपबन चित्रकार को पटचित्र या पट पेंटिंग के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। दक्षिण 24 परगना की शोभरानी पुद्दार को उनके जूट के काम के लिए शिल्प गुरु पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं उत्तर 24 परगना के अजीत कुमार दास को हर्बल रंगों से कपड़े की कढ़ाई के लिए शिल्प गुरु पुरस्कार मिला। पश्चिम बंगाल के अन्य शिल्प गुरु पुरस्कार विजेताओं में टेराकोटा कार्य के लिए डोलन कुमार मंडल, कागज की लुगदी से बने हस्तशिल्प के लिए शिव शंकर साधु और मिट्टी या स्मृति कार्य के लिए तरित पाल शामिल है और ये पुरस्कार राज्य की समृद्ध शिल्पकला और सांस्कृतिक विरासत को उजागर करते हैं। तो ऐसे में एक बहुत ही अच्छी जो है ये पहल है, जिसमें कि जो हस्तशिल्प कलाकार हैं उनको बढ़ावा मिला ताकि उनके जो रोजगार के अवसर हैं वो सृजित हो सके। महानगरों की खबरों के बाद अब मौसम का हाल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली के मौसम की, तो आज सुबह से ही कोहरा छाया रहेगा। न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। मुंबई और कोलकाता में आज आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा।
Chennai is expected to have generally cloudy sky with light rain. The minimum temperature was 24 degrees Celsius and maximum will be around 30 degrees. Bengaluru is expected to have mist. The minimum temperature was 16 degrees Celsius and maximum will be around 28 degrees. Hyderabad is expected to have fog mist in the morning and partly cloudy sky later. The temperature will hover between minimum of 13 degrees and a maximum of 29 degrees Celsius. Today is Human Rights Day. A day to remind us that everyone is born equal and deserves dignity and respect. The day was established in 1950 to commemorate the Universal Declaration of Human Rights, UDHR, adopted by the United Nations on 10th December 1948, which outlined fundamental human rights for all. India has played a key role in promoting human rights globally. India's constitution guarantees fundamental rights such as equality, liberty, and dignity, while initiatives like the right to information, right to education, protection of women from domestic violence, Transgender Rights Act, and programs like Swachh Bharat, Beti Bachao, Beti Padhao, Ayushman Bharat, and Digital India continue to protect and empower citizens. The National Human Rights Commission, NHRC, established in 1993 under the Protection of Human Rights Act, PHRA, oversees human rights adherence in India.
जी बिल्कुल नीना, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज इस अवसर पर नई दिल्ली के भारत मंडपम में कार्यक्रम को संबोधित करेंगी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इसका आयोजन किया है। 1948 में आज ही के दिन मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा स्वीकृत की गई थी और इस वर्ष मानवाधिकार दिवस की थीम है सबके लिए आवश्यक जनसेवाओं की गरिमापूर्ण उपलब्धता सुनिश्चित करना। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इस विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधान सचिव डॉ पी के मिश्रा मुख्य भाषण देंगे और सम्मेलन में राज्य मानवाधिकार आयोगों, राष्ट्रीय आयोगों, सरकार, नागरिक समाज और शिक्षा जगत के प्रतिनिधि भी भाग लेंगे।
एंड नाउ फरहत, इट्स टाइम टू मूव ऑन टू द सेक्शन ऑफ हिस्ट्री, व्हाट हैपेंड इन द पास्ट टुडे, दैट इज ऑन 10th ऑफ दिसंबर।
जी बिल्कुल, सबसे पहले बात कर लेते हैं 1964 की, तो आज ही के दिन नोबेल शांति पुरस्कार अमरीकी नागरिक अधिकार कार्यकर्ता डॉ मार्टिन लूथर किंग जूनियर को प्रदान किया गया।
In 1799, France officially adopted the metric system during the French Revolution, establishing the meter, gram, and liter as foundational units.
1998 में आज के दिन अमर्त्य सेन को स्कॉटहोम में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
In 1903, Marie and Pierre Curie won the Nobel Prize in Physics for their joint research on radioactivity with Henri Becquerel, making Marie the first woman to ever receive a Nobel Prize.
सन 2009 में अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और सद्भाव को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए नोबेल शांति पुरस्कार स्वीकार किया।
In 1913, Rabindranath Tagore became the first non-European to win the Nobel Prize in Literature for his collection Gitanjali. And in 1930, Indian physicist Sir Chandrasekhar Venkataraman was awarded the Nobel Prize in Physics.
और सन 2016 में बॉब डिलन को साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
In 1964, the American civil rights activist Dr. Martin Luther King Jr. was awarded the Nobel Peace Prize, and in 1998, Indian economist Amartya Sen won the Nobel Prize in Economics for his work on welfare economics, especially in areas like social choice, poverty, famine, and human development. In 1992, India's first commercial hovercraft service was inaugurated between Surat and Bhavnagar in Gujarat. And in 2004, in the Dhaka test, Indian leg spinner Anil Kumble surpassed Kapil Dev to become the first Indian bowler to take the most wickets in test cricket.
और अब हम बढ़ते हैं अपने आखिरी सेगमेंट की ओर, जहां याद करेंगे कुछ जानी मानी शख्सियतों को। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार और शिक्षाविद मोहम्मद अली जौहर की। इन्होंने सन 1911 में कॉमरेड नामक साप्ताहिक समाचार पत्र निकाला। तत्कालीन अंग्रेज सरकार द्वारा 1914 में इस पत्र पर प्रतिबंध लगा दिया गया और मोहम्मद अली को 4 साल की सजा दी गई। मोहम्मद अली ने खिलाफत आंदोलन में भी भाग लिया और अलीगढ़ में जामिया मिलिया विद्यालय की स्थापना की, जो बाद में दिल्ली लाया गया। ये रायपुर रियासत के शिक्षा अधिकारी भी बनाए गए थे।
Farron Young was an American country music singer and songwriter from the early 1950s into the mid-1980s and one of its most successful and colorful stars. Hits including If You Ain't Loving and Live Fast, Love Hard, Die Young marked him as honky-tonk singer in sound and personal style, and his chart-topping singles Hello Walls and It's 4 in the Morning showed his versatility as a vocalist. Young is a member of the Country Music Hall of Fame. Dear listeners, let's groove into musical melody of Hello Walls.
Hello Walls.
Hello, hello.
How things go for you today? Don't you miss her? Since she up and walked away, and I'll bet you pray to spend.
और श्रोताओं, आज ही के दिन जन्म हुआ था भारतीय राजनीति के शिखर पुरुष, जो राजा जी के नाम से भी जाने जाते थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का। राजगोपालाचारी वकील, लेखक, राजनीतिज्ञ और दार्शनिक थे। वे स्वतंत्र भारत के द्वितीय गवर्नर जनरल और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। अपने अद्भुत और प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण राजा जी के नाम से प्रसिद्ध महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक राजगोपालाचारी को आधुनिक भारत के इतिहास का चाणक्य माना जाता था। राजगोपालाचारी की बुद्धि, चातुर्य और दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण ही जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और सरदार पटेल जैसे अनेक उच्चकोटि के नेता उनकी प्रशंसा करते नहीं थकते थे।
अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल वाज अ स्वीडिश केमिस्ट, इन्वेंटर, इंजीनियर एंड बिजनेसमैन। ही इज नोन फॉर इन्वेंटिंग डायनामाइट एज वेल एज हैविंग बिक्वीथ्ड हिज फॉर्च्यून टू एस्टैब्लिश द नोबेल प्राइज। अपॉन हिज डेथ, नोबेल डोनेटेड हिज फॉर्च्यून टू अ फाउंडेशन टू फंड द नोबेल प्राइजेस, व्हिच annually recognize those who have conferred the greatest benefit to humankind. Nobel was elected a member of the Royal Swedish Academy of Sciences, which pursuant to his will is responsible for his choosing the Nobel laureates in physics and in chemistry.
और आज के दिन हमें अलविदा कहा हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता, निर्माता, निर्देशक अशोक कुमार ने। अशोक कुमार को सन 1999 में भारत सरकार ने कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया। हिंदी सिनेमा के युग पुरुष कुमुद कुमार गांगुली उर्फ अशोक कुमार को एक ऐसे अभिनेता के रूप में याद किया जाता है जिन्होंने उस समय प्रचलित थिएटर शैली को समाप्त कर अभिनय को स्वाभाविकता प्रदान की और 6 दशकों तक अपने बेहतरीन काम से सिने प्रेमियों को रोमांचित किया। तो आइए क्यों ना सुन लें सबसे पहले उनका ये गीत रेलगाड़ी।
बाजू बाबू समझो इशारे, हॉर्न पुकारे, बम बम बम, यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, बम बम बम, बाबू समझो इशारे, हॉर्न पुकारे, बम।
अशोक कुमार को दादा मुनि के नाम से भी जाना जाता था। इन्होंने 300 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया। तो आइए सुनते हैं फिल्म हावड़ा ब्रिज से उनका ये गीत, जिसमें मधुबाला के साथ जो उनका रोमांस था वो काफी मशहूर हुआ। इसके अलावा उनके अभिनय का जो सफर था इस फिल्म से शुरू हुआ और उनकी फिल्म थी अगली अछूत कन्या। 1937 में प्रदर्शित फिल्म अछूत कन्या में देविका रानी उनकी नायिका रही। ये फिल्म काफी कामयाब रही और उसमें दादा मुनि को बड़े सितारों की श्रेणी में स्थापित किया। इसके अलावा फिल्म भाई भाई में भी उनका किरदार बखूबी पसंद किया। तो क्यों ना इस फिल्म से भी ये गीत सुन लेते हैं, ऐ दिल मुझे बता दे।
बता दे तू किस पे आ गया है, वो कौन है जो आकर खाबू
ना अशोक कुमार की जब बात हो रही है तो क्यों ना उनकी फिल्म से ये डायलॉग भी सुन लेते हैं।
घर में कोई भी कुछ कहे तो गुस्सा नहीं करना, इससे तुम्हारे खून का दौरा और बढ़ जाएगा।
तो ठीक कहता कन्हैया, लेकिन अब बढ़ने के दिन नहीं घटने के दिन आ गए। जो जो शाम होती है आदमी छोटा होता जाता है और साया लंबा होता जाता है।
तो बहुत ही अच्छा अभिनय और बहुत ही अच्छा जो है संगीत भी इन्होंने हमेशा से दिया। और फिल्म इज्जत हो, सावित्री, निर्मला, खूबसूरत फिल्म में जिस तरीके से उन्होंने किरदार निभाया रेखा के साथ, तो वो भी जो है आज भी लोग याद करते हैं।
यस, फरहत, अ लेजेंडरी एक्टर इंडीड। सर केनेथ चार्ल्स ब्राने इज अ नॉर्दर्न आयरिश एक्टर, डायरेक्टर, फिल्म प्रोड्यूसर एंड स्क्रीन राइटर। ही हैज बोथ डायरेक्टेड एंड स्टार्ड इन सेवरल फिल्म अडैप्टेशंस ऑफ विलियम शेक्सपियर्स प्लेज इंक्लूडिंग हेनरी फाइव, फॉर विच ही वाज नॉमिनेटेड फॉर द एकेडमी अवार्ड्स फॉर बेस्ट एक्टर एंड बेस्ट डायरेक्टर, मच अडू अबाउट नथिंग, ओथेलो, हैमलेट, लव्स लेबर्स लॉस्ट एंड एज यू लाइक इट। Brane has been nominated for 5 Academy Awards, 5 Golden Globe Awards, and has won 3 BAFTA and 2 Emmy Awards. Enjoy this excerpt from Hamlet.
To be or not to be, that is the question. Whether 'tis nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles, and by opposing, end them, to die, to sleep no more, and by a sleep to say we end the heartache and the thousand natural shocks that flesh it.
Jairam Subramaniam, known mononymously as Jairam, is an Indian actor who predominantly appears in Malayalam films and several Tamil and Telugu films. He is also a chenda percussionist, mimicry artist, and occasional playback singer. Jairam has acted in more than 200 films and has received several awards, including the Padma Shri, 2 Kerala State Film Awards, 2 Tamil Nadu Film State Awards, and 4 Film Fare Awards South. Let's listen to this song from his movie.
Marakudayal mukham marakkum manalla mashikarupal mili eludum meenalla புலர்வேளையில் முல்லையாவில் மூவந்தியில்
Emily Elizabeth Dickinson was an American poet. While Dickinson was a prolific poet, fewer than a dozen of her nearly 1,800 poems were published during her lifetime. The poems published then were usually edited significantly to fit conventional poetic rules. Her poems were unique to her era. Let's listen to Hope is the Thing with Feathers.
And sings the tune without the words and never stops at all. And sweetest in the gale is heard, and sore must be the storm that could abash the little bird that kept so many warm. I've heard it in the chillest land and on the strangest sea, yet never in extremity it asked a crumb of me.
बहुत खूब, ये बहुत ही अच्छी कविता है। और वैसे भी चिड़ियों की जो चहचहाहट है उससे अपने आप में ही जो है मनोरम कह लीजिए या खुशियां कह लीजिए वो भर उठती है।
It brings hope.
जी बिल्कुल। और अब आगे बढ़ते हैं, आज जन्मदिन है जानी मानी अभिनेत्री रति अग्निहोत्री का। और रति ने 16 साल की उम्र में एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा। रति ने 1981 में बॉलीवुड फिल्म एक दूजे के लिए में कमल हसन के साथ काम किया और ये फिल्म काफी सुपरहिट रही। इसके बाद रति ने 43 हिंदी फिल्मों में काम कर अपना मुकाम हासिल किया, तो क्यों ना सुनते हैं उनकी फिल्म मशाल से ये प्यारा संगीत। र प्रति ने फिल्म यादें और देव में भी काम किया और साथ ही 20 साल बाद साउथ इंडियन फिल्मों में भी उन्होंने एंट्री की। साल 2001 में उन्होंने फिल्म मजनू, 2003 में अन्नयार और एक इंग्लिश फिल्म में भी अभिनय किया जो काफी प्रसिद्ध रही।